Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, ye sanket kiya gaya ki sare jagat ka adhishthan Brahm hai. और जितना भी जगत है वो शव अविद्या को लेकर के माया को लेकर के अध्यस्त है, और जितनी भी अध्यस्त की सत्ता होती है वो सब अनित्य और मिथ्या होती है। मात्र ब्रह्म ही सत्य है, वही एक सत्तात्मक है। इसलिए संकेत किया गया, जब वह जो असत्ता रूप जगत है, जब तक उसमें विद्यमानता रहती है, उसकी बुद्धि रहती है, तब तक कामना आदि अहम आदि पूर्वक कामना का प्ररोहण होता है और उसको लेकर के प्रवृत्ति आदि होती है, उस प्रवृत्ति को लेकर के कर्म होते हैं, कर्मों को लेकर के उनके फल होते हैं, फल को लेकर के भोग होता है, और इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। और इस चक्र में ही चक्रायत होता हुआ यह जीव नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त करता है। इसको शांति की प्राप्ति नहीं होती। अब यदि शांति चाहता है तो उसके लिए क्या उपाय है? तो मूल में ही बतला दिया कि ये सब अध्यास जो है, और अध्यास को लेकर के जगत, तो उसमें मूल में ही कारण है अविद्या। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक शांति की प्राप्ति संभव नहीं। तो इसलिए उस अविद्या की निवृत्ति किस प्रकार से हो, तो इसको ही संकेत करने जा रहे हैं कि अविद्या की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है तो विद्या। विद्या के अतिरिक्त अविद्या की निवृत्ति संभव नहीं। अब जितने भी कर्म, उपासना, योग आदि हैं, वो उसके सहायक हो सकते हैं प्रयत्न विशेष के, लेकिन वो अविद्या की सर्वथा निवृत्ति करने में समर्थ नहीं। ये संकेत किया, इसलिए विद्या के द्वारा ही निवृत्ति होनी है। और वह विद्या क्या है, तो इसको लेकर के संकेत कर दिया, उपनिषद ही विद्या है। उपनिषद के अंतर्गत जो कुछ भी विवेचन किया गया है वो सब विद्यात्मक है या विद्या रूप है। तो ऐसे उपनिषद का अर्थक ज्ञान यदि हमें हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, तो विद्या आती है। और उस विद्या के द्वारा जो है अविद्या की निवृत्ति होती है। और जब कारण चला जाता है, उपादान की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर समस्त कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। और जब तक कारण की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कार्य अंशतः निवृत्त होता रहेगा, लेकिन पूर्णतः वह कार्य निवृत्त होता नहीं। यह संकेत किया गया, इसलिए यहां पर जो है इस उपनिषद रूपी विद्या का प्रारंभ हो रहा है। और इसमें जो है भाष्यकार ने इसके संबंध भाष्य को लेकर के संकेत किया, यदि किसी के हृदय के अंतर्गत ऐसी कल्पना होती है, ऐसी इच्छा होती है या जिज्ञासा होती है कि भई अविद्या की निवृत्ति और अविद्या से होने वाले जो भी दुख आदि हैं, उनकी निवृत्ति के लिए कर्म ही हमारा जो है सहयोग कर दे, या कर्म से निवृत्ति हो जाएगी, उसमें भी वह अपने को विवेकी समझते हुए जिज्ञासा करता है, अपने को बुद्धिमान समझता हुआ जिज्ञासा करता है और संकेत करता है कि कैसे कर्म। तो अब वो इस पे कहता है कि वही जो भी हमारे कर्म संचित हैं, अब उन संचित कर्मों का जो पाप है, या संचित कर्मों का जो अशुभ फल है या जो पापात्मक कर्म है, उन पापात्मक कर्मों का, संचित पापात्मक कर्मों का जो पाप रूप फल है, उस फल की निवृत्ति करना जो है क्या है, तो कहने लगे वो हम नित्य कर्म के द्वारा उसकी निवृत्ति कर लेंगे। नित्य कर्म करेंगे, उस नित्य कर्म के द्वारा जो अशुभ कर्म है और जो अशुभ कर्म संचित है उनका फल जो पाप है तो वो निवृत्त हो जाएगा, और निवृत्त हो जाएगा तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी उसकी जिज्ञासा है। इसलिए उसने कहा इतना ही नहीं, और जो सकाम कर्म है, कहा उन सकाम कर्मों को लेकर के हम निष्काम आदि कर्म करने लगेंगे तो उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। ये जब चर्चा की तो इस पर आचार्य शंकर कहते हैं कि वही सर्वथा आप ये चाहो कि नित्य कर्म के द्वारा और जो है वो जो कर्म हैं जो संचित हैं उनके पापों की निवृत्ति हो जाएगी, तो ये सर्वथा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, इसको लेकर के संकेत किया, क्योंकि वह जो कर्म जितने भी हैं वो संपूर्ण कर्म जो हैं वो कब हैं, तो जब तक कामना नहीं होती है तब तक कोई कर्म होता। जितने भी कर्म हैं चाहे नित्य हो अनित्य हो या सकाम हो, वो सारे के सारे कर्म जो है कामना पूर्वक ही होते हैं, कामना उनका जो है हेतु है। तो कामना को लेकर के होने वाले जो कर्म हैं और उन कर्मों की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक कामना की निवृत्ति नहीं हो। इसलिए कामना की निवृत्ति कब होगी, तो कहने लगे कामना होती ही है कर्तृत्व को लेकर के, कर्तापने को लेकर के, और कर्तापन कब आता है, तो कहने लगे अविद्या को लेकर के। तो जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक आप जो कह रहे हो वो संभव नहीं। तो कामना आदि की निवृत्ति करने के लिए कर्तृत्व भाव की भी निवृत्ति करना। अब उपनिषद के अंतर्गत जब ऐसी चर्चा कर दी जाती है तो यहीं पर व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तापने को छोड़ना नहीं चाहता। हम जो सुख चाहते हैं वो भी कैसे चाहते, मेरा अस्तित्व बना रहे और मुझे सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त करने वाला मैं और सुख मेरा प्राप्य वस्तु, ऐसा होकर के जब तक करते रहते हैं तब तक सुख तो मिलता है, लेकिन कैसा सुख मिलता है, अस्थाई सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन स्थाई सुख मिलता नहीं। यदि हम स्थाई सुख चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कहा कर्तापने को छोड़ना पड़ेगा। अब ये कौन कहती है, कहा उपनिषद। लेकिन इस बात को गले उतारना बड़ा कठिन हो जाता। हम जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे शांति चाहे सुख चाहे, वो अपने कर्तापने को स्थिर रख के चाहते हैं। लेकिन उपनिषद कहती है कि इस कर्तापने को भी छोड़ना पड़ेगा, का और कर्तापने को छोड़ोगे तो कामना भी छूट जाएगी, और कामना छूट जाएगी तो कर्म भी छूट जाएंगे, चाहे वो संचित हो चाहे प्रारब्ध हो, और नित्य आदि कर्मों का भी जो है छूटना संभव हो जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा, तो इसके मूल में कर्तापने को छोड़ने के लिए कहा अविद्या का छूटना, और अविद्या छूटने के लिए कह दिया उपनिषद विद्या के द्वारा ही छूट। अब ऐसी जो उपनिषद विद्या है, वह उपनिषद विद्या हमारे को प्राप्त कब होगी, तो उस उपनिषद विद्या को प्राप्त करने के लिए संकेत किया गया कि उपनिषद विद्या को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर योग्यता जरूरी है, अधिकारता कहें योग्यता, पात्रता जरूरी है। और उस पात्रता को क्रम से बतला दिया, वो पात्रता क्या है, तो जो साधन चतुष्टय कहे गए वही पात्रता है। जब तक उपनिषदों के वाक्यों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उपनिषद विद्या जो है वो फलीभूत नहीं, या उस उपनिषद विद्या का जैसा हमें बोध होना चाहिए वो उपनिषद विद्या जैसी हमारे में आनी चाहिए वैसी आ नहीं सकती। ये सब संकेत कर दिए साधन चतुष्टय के द्वारा। अब आगे संकेत करते हैं, किसी ने जो है साहस किया, वैसे ये साहस बहुत कम हो पाता इस विद्या में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि हम अपने कर्तृत्व आदि को छोड़ने के लिए तैयार तभी होते हैं जब विशेष हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, विशेष मुमुक्षता होती है, तभी जाकर के हम इसको छोड़ने को तैयार होते हैं। और जब छोड़ने को तैयार होते हैं तब उपनिषद विद्या में प्रवेश होता है। ये संकेत किया, इसलिए कहने लगे ऐसे व्यक्ति के लिए भी उसका उस विद्या में प्रवेश हो। इसलिए यहां आगे उपनिषद विद्या को पहले उपासना रूप से प्रारंभ करते हैं, और उपासना भी कैसे संभव होगी, कैसे उपासना हो और उपनिषद का हमें अर्थबोध हो, तो इसके लिए चर्चा कर रहे हैं कि वही उपासना की विधि के लिए कुछ शिक्षा चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक उपासना विधि भी समीचीन रूप से कर सकोगे नहीं। उपासना नहीं होगी तो अंतःकरण की शुद्धि होगी नहीं, पात्रता आएगी नहीं, और उपनिषद विद्या में जैसा प्रवेश होना चाहिए वैसा प्रवेश होगा नहीं। इसलिए आगे जो है शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं कि उपनिषद विद्या में यह शिक्षा को बतलाते हुए संकेत किया कि उपनिषद विद्या की शिक्षा क्या है जो उपासना के लिए है, तो उपासना के लिए जो है भी शिक्षा जरूरी है। तो उसको बतलाते हैं कि उपनिषद का ठीक ठीक बोध होने के लिए हमें पहले उपासना करनी है, तब उपनिषद का ठीक ठीक बोध हो सकेगा। इसलिए संकेत किया अर्थ ज्ञान प्रधानत्वात् उपनिषदो ग्रंथ पाठे यत्नो परमो मा भूत शिक्षाध्याय आरभ्यते, ऐसा संकेत किया। माने उपनिषद जो है उस उपनिषद का अर्थ ज्ञान हमें ठीक ठीक हो जाए, अर्थबोध ठीक ठीक हो जाए, इसलिए उपनिषद के अध्ययन में हमारी उपरामता न हो, और उपरामता न हो इसलिए क्या कर रहे हैं, का शिक्षा अध्याय को यहां प्रारंभ कर रहे, या शिक्षा वल्ली को प्रारंभ कर रहे। कहा शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं, तो उसको बतला रहे हैं शिक्षाम व्याख्यास्यामः, प्रयोग किया कि यहां से हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। तो शिक्षा शब्द है, यहां पर जो दीर्घ ई है शिक्षा शब्द जैसे प्रचलित है, लेकिन यहां प्रयोग किया गया शिक्षा, तो क्यों किया गया, तो कहने लगे ये छांदस है, वैदिक है, और जो वैदिक होता है उसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते नहीं, वैदिक रूढ़ी होता है, वैदिक को हम यौगिक नहीं बना सकते, माने उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहां पर शिक्षा शब्द में जो दीर्घाकार है वो कैसा है, तो कहने लगे वैदिक है, छंदस है, वेद के अनुसार ही। तो इस प्रकार की जो शिक्षा, उस शिक्षा की व्याख्या करते, और व्याख्या शब्द को लेकर के भी संकेत किया। वी और अंग उपसर्ग, वी शब्द का अर्थ है विशेषेण और अंग उपसर्ग का अर्थ है असमंतात। तो विशेष रूप से, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से हम यहां क्या करने जा रहे हैं का उपनिषद की जो शिक्षा है उसको कहने जा रहे हैं। दूसरी बात यहां बतला दी कि जो ख्या, ख्याय धातु जो कथन अर्थ में है कहा उससे ये शब्द नहीं बना। किससे बना कहा चच्छिंग धातु से, लेकिन चच्छिंग धातु को चच्छिंग ख्याय और वालिटी ये सूत्र व्याकरण के हैं, उनके द्वारा जो है वहां पर उस चच्छिंग को ख्या आदेश हो जाता है और तब ये व्याख्या शब्द बनता है। तो केवल कथन मात्र नहीं, विशेष रूप से और सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से उस शिक्षा को हम यहां पर कहने जा रहे हैं, उसका जो है माने कथन करने जा रहे हैं, ये तात्पर्य हो जाता। अब शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का मतलब है जिससे सीखा जाए, सीखने का नाम ही है शिक्षा। अब कैसे सीखा जाएगा, सीखने के लिए साधन क्या है, सीखने के लिए उपाय क्या है? तो साधनों की चर्चा करते हुए कहा गया कि शिक्षा के लिए जो सीखने के साधन हैं वो क्या है, तो पहले ही संकेत किया वर्ण, अक्षर जिसे कहते वर्ण। वर्ण क्या है? तो कहने लगे जिसके द्वारा सीखा जाए वह वर्ण, या जो वर्ण सीखे जाए वह शिक्षा, ऐसा संकेत कर दिया। तो जिसके द्वारा वर्ण सीखे जाए या वर्णों के द्वारा जो सीखा जाए उसे क्या कहते हैं, का शिक्षा। तो वर्णों के द्वारा या जिसके द्वारा वर्ण सीखे जाए, तो दोनों ही अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वर्ण नहीं होंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि जितने भी शब्द हैं वो सब कैसे हैं, वर्णों को लेकर के ही, वर्णों से रहित कोई भी शब्द नहीं। तो इसलिए वर्णों को सीखना भी शिक्षा है और वर्णों के माध्यम से जो सीखा जाता है वो भी शिक्षा है, ये संकेत। तो पहले ही साधन बतलाया वर्ण, और दूसरा साधन कहा स्वर। वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय। ये शिक्षा शब्द के अंतर्गत बतलाए वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान। अब यहां पर वर्ण शब्द को तो बतला दिया कि जिसके द्वारा सीखा जाए वह वर्ण, या जिसके द्वारा वर्ण सीखे जाए है ना वह शिक्षा। लेकिन अब यहां पर यह विचार करना है कि वर्ण क्या है, तो हम लोग जानते हैं अकार आदि ही वर्ण हैं। अकार आदि क्या है, वर्ण है। अब ये कहां से वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो देखो ओम जो है उस ओम से ही इन समस्त वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। तो जितने भी वर्ण हैं उनकी निष्पत्ति ओम से हुई। अब यहां पर जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण, और फिर वर्णों में भी विभाजन किया गया। क्या विभाजन किया गया, स्वर और व्यंजन। स्वरों को अच शब्द से भी कहते हैं। तो अब यहां पर संकेत किया कि जो स्वर, अब स्वर क्या है, तो अकार उकार इकार हैं, ये सब क्या कहलाते, ये स्वर कहलाते। तो स्वर और स्वर शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये वर्णों में ही स्वर क्या है, तो और भी स्वर है। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वर, उन स्वरों के भी यह स्वर विशेष बतलाए। अकार को उदात्त अकार भी कहेंगे, अनुदात्त अकार भी कहेंगे और सुरित अकार भी कहेंगे। तो ये हैं स्वर, उदात्त, अनुदात्त और सुरित जो हैं ये क्या हैं? उन वर्णों के स्वर। अब आप बोलते हो कि अमुक व्यक्ति गा तो रहा है लेकिन स्वर से नहीं बोल रहा है, तो स्वर शब्द को आप केवल गला समझ लेते हो, है कंठ समझ लेते, लेकिन कंठ ही नहीं है। स्वर शब्द का मतलब है उस वर्ण का उच्चारण उदात्त रूप से हो रहा है अथवा अनुदात्त रूप से हो रहा है अथवा स्वरित रूप से हो रहा है। कहां पर उदात्त रूप से होना चाहिए, कहां पर अनुदात्त रूप से होना चाहिए और कहां पर स्वरित रूप से होना चाहिए। एक ही अकार को, वैसे तो पाणिनि व्याकरण के अंदर 18 वेद कर दिए, एक अ का 18 रूप में उच्चारण होता है, लेकिन यहां पर उदात्त और स्वर को ही बात कह रहे। तो अकार का उदात्त रूप से उच्चारण और ऐसे ही अनुदात्त रूप से और स्वर रूप से, उससे होता क्या? यदि अकार का उदात्त रूप से उच्चारण होता है तो उस स्वर के अनुसार ही उसके अर्थ का बोध होता। समास आदि आगे आते हैं तो समास जो है अकार वही है, लेकिन यदि स्वर का भेद हो जाएगा तो समास का भी भेद हो जाता, समास में भी भेद पड़ जाता। इसलिए आप एक कथानक सुनते हो पुराणों में, क्या इंद्र का और इंद्र शत्रु वृत्तासुर का। वृत्तासुर जो है वो इंद्र को मारने के लिए उपासना करता है, अनुष्ठान करता है, और जिस मंत्र को लेकर के वो अनुष्ठान करता है और उसका उच्चारण करता है, तो उच्चारण जब करता है तो स्वर का भेद हो जाता है, और स्वर का भेद हो जाता है तो समास का भेद हो जाता है। अब इंद्रस्य शत्रु या इंद्रः शत्रु यस्य, इस प्रकार से समास के विग्रह होते हैं। तो अब जो है उसे कहना से तो चाहिए यह कि इंद्रस्य शत्रु है, इंद्रः शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसा इंद्र मारा जाए, ये होना चाहिए। लेकिन स्वर का भेद हो गया तो इंद्र का है शत्रु जो, ये उसका अर्थ हो गया। शब्द वही था, मंत्र का उच्चारण वही वर्ण थे, लेकिन उस वर्ण में उदात्त अनुदात्त कहां होना चाहिए इसका भेद हो गया। इसके भेद से समास में भेद हो गया, समास में भेद हो गया तो उसने इंद्र को मारने के लिए उपासना की लेकिन स्वयं ही मारा गया। इसलिए कहा भी है, कहने लगे मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त तमर्थमाह। संकेत वहां किया कि वह मंत्र जो स्वर और वर्ण से रहित है, मने किसी वर्ण की न्यूनता हो गई तो भी मंत्र व्यर्थ हो गया। यदि उसने स्वर का, वर्ण में जो स्वर होना चाहिए उस स्वर की हीनता हो गई तो भी मंत्र व्यर्थ हो गया। तो संकेत किया कि स्वर तो वर्ण तो वा प्रयुक्तो, प्रयोग तो हम कर रहे हैं, उसका जो है उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन स्वर का जो है बोध नहीं। स्वर जो होना चाहिए वो स्वर वहां नहीं। अब स्वर क्या है? तो जैसे कहा उदात्त, तो उदात्त का मतलब क्या? ऊंचा नीचा है। तो देखो इन लोगों को भी पता है, माने उसका मतलब है ताल्वादि स्थानेषु सभागेषु, ऊर्ध्वभागो निष्पन्नो यो वज स उदात्त संज्ञः स्यात्। हमारे तालु, तालु कहां है तो मुख के अंदर, तालु आदि के स्थान को लेकर के जब वायु का स्पंदन होता है, हमारी नाभि देश से वायु का स्पंदन हुआ और वो स्पंदन होकर के नलिकाओं से होता हुआ गले में आया, गले में आकर के तालु तक पहुंचा और तालु में पहुंच करके तालु ने उसे जो है ऊपर की तरफ वायु को संकेत कर दिया और ऊपर जाकर के ऊर्ध्वभाग से, जब मुख के ऊर्ध्वभाग से उस वर्ण का उच्चारण हुआ तो उस उच्चारण का ही नाम है माने उदात्त स्वर। उसका नाम क्या है? उदात्त स्वर। और जब तालु आदि स्थान के अधोभाग से वह जो है वर्ण उच्चरित हुआ, उस वायु का स्पर्श नीचे तालु के हुआ तो कहने लगे वो हो गया अनुदात्त स्वर। उसका नाम क्या हो गया? अनुदात्त स्वर। और जब जो है समाहारा स्वरितः, ऐसा पाणिनि व्याकरण में आया, जब जो है तालवाद के और ऊपरी और जो है अधोभाग दोनों के मध्य से उस वर्ण का यदि उच्चारण हुआ तो कौन स्वर हो गया? का स्वरित स्वर। ये स्वरों के रूप बतलाए तो वहां पर उसे कहते हैं स्वरित स्वर, माने मध्यम भाग से जिसका उच्चारण होता है वो स्वरित कहलाता। अब जो है ऊपर से यदि उच्चारण होता है तो उदात्त हो गया। और इस प्रकार से वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उनके स्वर भेद होते हैं और उस स्वर भेद का प्रभाव कहां पड़ता है? तो जो हम उच्चारण वाक्य का कर रहे हैं, जिस मंत्र का कर रहे हैं, उसके अर्थ बोध में, उसके अर्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है। समास आदि होकर के तो अर्थ पर प्रभाव पड़ता है और उस अर्थ के अनुसार ही कार्य होता है। कार्य किसके अनुसार होता? अर्थ के अनुसार होता।